मुफ्ती साहब, जब हम नेकियां करते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि नेकियां जाया हो जाएं?
कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो बहुत सारी सूरतें हैं जिनमें आमाल के जाय होने का अंदेशा है, यानी
सही।
बाद में तो कतई तौर पे आमाल जाया हो जाते हैं और बाज के अंदर ये अंदेशा है कि आमाल जाय ना हो जाए। उसमें चंद एक चीजें मैं अर्ज कर देता हूं। जैसे सबसे पहले कुफ्र,
सही।
कुफर के होते हुए कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, बल्कि भले वो पूरी दुनिया को खाना खिला दे और पूरी दुनिया को
अच्छा
नौकरियां दिला दे,
ठीक है।
अगर कुफर है तो अल्लाह की बारगाह में आखिरत के एतबार से वो अमल कोई कबूल नहीं है। दुनिया में अल्लाह ताला उसको उसका बदला दे देगा, उसकी इज्जत के तौर पर, उसकी शोहरत की सूरत में, उसकी दौलत की सूरत में, उसकी नेकनामी की सूरत में, दुनियावी इन
सही
चीजों के अंदर उसको बदला मिल जाएगा, लेकिन
ठीक है,
आखिरत के अंदर उसे उसके अमाल का
कोई
कोई
फायदा
बदला नहीं मिलेगा। कुरान पाक की वाज आयत मुबारक है, इरशाद फरमाया कि हम उनके अमाल की तरफ कसद फरमाएंगे और उन्हें हबा अम मंसूरा कर देंगे, यानी उन्हें बिल्कुल जर्रात के अंदर बखेर के रख देंगे। तो जो कुफार के अमल है ये बिल्कुल जो है वो
गैर
रोशनदान की
मकबूल है।
जैसे धूप के अंदर जो जर्रात नजर आते हैं ये उनकी तरह बिखर जाएंगे।
सही।
दूसरे नंबर पे है इर्तिदाद। इर्तिदाद बेसिकली कुफ्र ही है, लेकिन कुफ्र जो है वो जरा दोनों एतबार से बोला जाता है। इर्तिदाद ये है कि इस्लाम से कुफ्र की तरफ गया,
सही।
उसके अमल भी बर्बाद है, ये भी कुरान पाक के अंदर है। इरशाद फरमाया कि जो तुम में से अपने दीन से मुर्तद हो जाए, अपने दीन से फिर जाए, फिर वो कुफ्र की हालत में मर जाए, तो उसके अमाल दुनिया आखिरत दोनों में बर्बाद हो गए। तो इर्तिदाद जो है कुफर से, इर्तिदाद से कतई तौर पर आमाल बर्बाद हो जाते हैं,
ठीक है।
इससे नेकियां जाय हो जाती हैं। अब इसके बाद वो आमाल के जिनके बारे में रिवायात के अंदर मौजूद है या कुरान पाक की आयात मौजूद हैं और उनमें ये कवी अंदेशा मौजूद है कि उससे आमाल जाया हो जाए, वो भी मुतअद्दद है। जैसे मिसाल के तौर पर हसद, हसद के बारे में हदीस मुबारक है, इन हसद या अकुल हसनाती कमा
सही।
था अकुल नारुल हतम, कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तो
सही।
आग जैसे लकड़ी को खा के खत्म कर देती है, इसी तरह हसद जो है वो नेकियों को बर्बाद कर सकता है।
सही।
अच्छा, इसी तरह रियाकारी है। रियाकारी के बारे में तो मारूफ है कि रियाकारी से जो है वो आमाल का सवाब नहीं मिलता बल्कि उल्टा गुना मिलता है। कुरान पाक की
सही।
आयत मुबारक भी है, जो अपने रब से मुलाकात चाहता है, इसकी उम्मीद रखता है, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए।
सही।
उलमा ने यहां लिखा है कि यहां इबादत में शरीक ठहराने से मुराद रियाकारी है, कि रियाकारी करके बंदा अल्लाह की रिजा के साथ मखलूक की रिजा भी उसमें शामिल कर लेता है, या खालिस मखलूक ही की रिजा के लिए वो काम कर रहा होता है, तो रियाकारी से भी अमल बर्बाद हो जाते हैं।
सही।
अच्छा, इसी तरह किसी पर एहसान किया तो एहसान जताना, ये एहसान जताना भी आमाल को बर्बाद कर देता है, यानी उस अमल को, उस
सही, जो एहसान
जो
किया
एहसान
उसने।
किया उस अमल को। जैसे सदका किया किसी के ऊपर, अब सदके का एहसान जताया, किसी की मदद की और उस मदद का एहसान जताया, तो इससे अमल बर्बाद हो जाएगा। ये भी कुरान पाक की आयत मुबारक है, फरमाया ए ईमान वालों, अपने सदकात को बर्बाद ना करो, बिल मन्नी एहसान जताकर, वल अदा और तकलीफ देकर,
सही।
जैसे कल्लादी युनफिकु मालहु रिआ अन्नास, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है, यानी जैसे उसके आमाल बर्बाद हैं,
सही सही
इसी
सही।
तरीके से एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर अपने सदकात को बर्बाद ना करो। तो अब इस आयत में दोनों का बयान हो गया, यानी रियाकारी के साथ तशबीह दी गई और एहसान जताने को बयान किया
ठीक
गया,
है।
कि रियाकार के भी आमाल बर्बाद
एहसान
और
जताने
एहसान
वाले।
जतलाने वाले के भी सदका जो है वो बर्बाद हो गए। अच्छा, इसी तरह गीबत है। गीबत के अंदर यूं बर्बादी है कि बंदी की नेकियां दूसरे के नामा अमाल में
अल्लाह अल्लाह
मुंतकिल हो
अल्लाह,
जाती।
बहुत बड़ा लॉस है,
अब जिसकी गीबत की है उसके नामा अमाल में अमल मुंतकिल हो गए, तो अब ये तो अमाल
फारिग
से
हो
गया,
गया।
ये अमाल से फारिग हो गया, तो ये भी अपनी नेकियां जाया करने की सूरत है। अच्छा, इसी तरह जुल्म करना, ये नेकियां बर्बाद करने की कसीरुल वुकू सूरत है,
सही
यानी कुफ्र
सही
और इर्तिदाद से तो हत्तल इम्कान जो है वो मुसलमान
सही।
बचता ही है और बचा हुआ ही होता है,
जी जी
और जब कर लेता तो मुसलमान नहीं होता, ठीक है। लेकिन रियाकारी बहरहाल एक बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन गीबत और ये जो
जुल्म,
आखिरी सूरत है जुल्म,
जुल्म।
इनके अंदर इब्तिला ज्यादा है। रियाकारी में भी शायद
अच्छा।
उतना इब्तिला नहीं होता जितना गीबत के अंदर होता है और जुल्म के ऊपर होता है, उसमें भी गीबत ज्यादा है, जुल्म की
सही
बनिस्बत गीबत ज्यादा है।
ठीक।
अब जुल्म के बारे में भी हदीस मुबारक है कि जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है, तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि जिसके पास माल नहीं,
सही।
तो फरमाया कि मुफलिस वो है जो कयामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ उसने किसी पर जुल्म किया होगा,
सही।
किसी को मारा होगा, किसी को बिला वजह बुरा भला कहा होगा, तो अब اس کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو نیکیاں تو لے کر گیا، دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا اور نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لے کر گیا، لیکن دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے، کسی کا مال کھانے کی وجہ سے، کسی کو گالی دینے کی وجہ سے، کسی پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے، کسی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، کسی کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، کسی کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ایزا دینے کی وجہ سے، اس کے نامہ اعمال کی نیکیاں یہاں سے منتقل ہو کر ان مظلوموں کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ تو اب یہ جو ظالم ہے، یہ ظلم کی جو صورت ہے، یہ بھی آدمی کے نیکیوں کے برباد ہونے کی صورت ہے۔ تو یہ ساری صورتیں وہ بنتی ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد بھی ہو سکتی ہیں، پر ان سے بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ آدمی پھر ان کاموں سے بچے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔